से कोई अपने मुल्क में जहां रहते हैं चाहते हैं कि कोई मकान बनाए, अक्सर लोग करते हैं यूं कि कभी अच्छा सा मकान बनाया फिर वहां जाकर रहे हैं। एक आइडिया है या फिर शौक पैदा हुआ, फिर चीजें तैयार करने के लिए आदमी सोचता है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है और कैसे बनाता है। जनरल बात है, सबसे पहली चीज तो ये है उसके लिए पैसा चाहिए, ऐसे होगा ना, पैसा होगा तो मकान बनेगा। आप वहां किसी से कहते हैं, अपने भाई से कहते हैं, चाचा से कहते हैं मेरा मकान बना दें, कहते ठीक है बना देते हैं, पैसा भेजें, चुप, पैसा नहीं जा रहा मकान बनेगा नहीं बनता। चाचा हो, मामा हो, ताया हो, कोई भी हो, कोई पैसा दो तो हम आपको मकान बना देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ जोर लगाते हैं, है ना, टैक्सी चला रहे तो ओवर टाइम, मैं क्यों लगा रहे ओवर टाइम, यार मकान मकान बनाना है, किसी के जॉब कम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ओवर टाइम, क्यों यार वहाँ हमारा मकान बनना है, पैसे कमा खाने पाने को लिए तो गुजारे के तो जो हम काम कर रहे हैं काफ़ी है, लेकिन अब मकान बनाना है क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ेगा। तो यही असूल है जो इंसान की दुनिया में और आखिरत में हकीकत में एक ही है सारे। हम कुरान हकीम में कितने मुकामात पे सुनते हैं, अल्लाह ताला में खुशखबरी सुनाते हैं कि बड़े बड़े इंसान के महलात होंगे जन्नत में, बहुत ही खूबसूरत होंगे, बड़े बड़े इसमें डेकोरेशन होंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, किसकी होंगी, मेरी और आपकी होंगी ना, हम नहीं जाना वहाँ पर या नहीं। तो भाई असूल तो वही है, फरिश्तों से पूछा गया, लगे थे काम पर, बड़े खूबसूरत खूबसूरत मकान महल्लात, अभी तो हम गए भी नहीं लेकिन मेरे बन रहा है, आपके बन रहा है, सबके महल बन रहे, कही ये मकान भाई किस तरह बन रहे हैं लोगों, भैया ये महलात कैसे हैं जो जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने बताया है, इसका सिस्टम क्या है, हदीस से जो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने हिसाब से, हदीस का मफहूम बयान कर। वही सीधी बात है, जैसे दुनिया मकान बनाते थे ऐसे यहाँ मकान बन रहे लोगों के, दुनिया में कैसे बनाते थे, कैसे पैसे भेजते थे, तो यहाँ कैसे बनेंगे, किसी यहाँ भी चाहिए माल, किसी यहाँ कैसे माल भेजें, कहते अल्लाह का जिक्र करो, हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी तामीर शुरू हो जाती है महल्लात की, महल्लात बनने शुरू हो जाते हैं अल्लाह के जिक्र के साथ, जिक्र शुरू किया उधर काम शुरू हो गया। मेराज की रात नबी करीम तशरीफ ले जा रहे थे, जिबिल असलम भी साथ थे, सैनिक राय जाते ना आप हर जगह उम्मत की चीज़ें दिखाई जा रही थी, तो देखा लगे हैं फरिश्ते बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े खूबसूरत खूबसूरत महलात बन रहे हैं, बड़ी डेकोरेशन हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं, تو اللہ کے نبی نے پوچھا کس کے محل ہیں؟ کہتے جی آپ کی امت کے لوگوں کو محل ہیں. بنتے کیسے ہیں محل یہاں پر؟ تو نیچے ہیں. کہتے ہیں جو اللہ کا ذکر نیچے کرتے ہیں محل اوپر بنتے ہیں. تو میرے بھائیو جس وقت بھی آپ ذکر میں بیٹھیں گے الحمدللہ اپنے اپنے استاد مطابق کتنے جو ہم نے 10 تسبیح کرنی ہے اسی حساب سے محل بنے گا. جب آپ کہتے ہیں میں نے پاکستان اپنے ملک کے اندر محل بنانا ہے اس میں جناب لان بھی ہو لانچ بھی ہو فلاں بھی ہو یہ بھی ہو کہتے مال اتنا دے دیں پھر. کہتے ہیں 3 بیڈ بنانا ہے پھر اتنا مال دے دیں. تو وہاں جب ہم جا رہے ہیں وہ دائمی مکان ہوں گے ہمارے. وہاں کوئی آپ مارگیج تو لے نہیں سکتے. لے لیں گے وہاں تو کوئی مارگیج نہیں ہوگا کوئی سسٹم نہیں ہوگا. اللہ نے سسٹم یہ رکھا ہے اس دنیا کا آخر کے ساتھ ایسا لنک ملا ہے کہ کرو گے یہاں پاؤ گے وہاں. اس کے لیے پورا قرآن پھوڑو. تعالیٰ اللہ نے نبی تشریف لائے صحابہ کرام کی زندگی ہیں اولیاء اللہ ہمارے پاس ہے دن رات ہماری تبلیغیں ہوتی ہیں واعظ ہوتے ہیں علماء کرام زور لگاتے ہیں صرف ایک چیز پر کہ عمل کرو. سن لیا ختم. سننے کے بعد تو کوئی محل نہیں بنے گا ہمارا کوئی محل نہیں بنے گا. جب اس سننے پہ عمل کریں گے تو محل شروع ہو جائے گا. ابھی تو آپ بیٹھیں کوئی محل نہیں بن رہا اٹھ کے چلے جائیں سارے ویسے چلے جائیں گے فرشتے بیٹھے. لیکن جیسی الحمدللہ ذکر شروع کیا نہیں مقام شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی دیکھا نبی پاک نے خود آنکھوں سے دیکھ وہیں سے آ رہی ہیں ساری باتیں. یہ کوئی میں نہیں بتا رہا یہ سرکار دوستوں ہمارے دیکھ کے ہیں ہمارے ہاتھ. کہتے بھائی سستی مت کرنا یہ بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے. آج جو لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں 50 سال 60 سال مجھے بتائیں آپ کتنا پیسہ انہوں نے ملک میں بھیج دیا کتنے مکان بنا لیے کتنا کچھ بھی نہیں. دیکھ کتنے یہاں سال ہو گئے 60 سال ہو گئے یا کوئی پتہ نہیں بس سستی کرتے رہے کوئی کام ہی نہیں کرتا کوئی سوشل سیکورٹی پہ لگا ہے تو پیسہ تو کچھ بھی نہیں آئے گا آئے گا. تو یہ زندگی انسان کی ایسی ہے کتنی 60 سال 70 سال کے باقی تو کچھ تو بچپن میں نکل جاتی ہے کچھ لڑکپن میں نکل جاتی ہے کچھ بے شعوری میں نکل جاتی ہے کچھ سونے میں نکل جاتی ہے کچھ شادی بیاہ میں نکل جاتی ہے کچھ دنیا کے تقاضوں میں نکل جاتی ہے. مٹھی میں جو زندگی آتی ہے آپ کے مشکل سے ایک دن ایک رات آئے مجھے اس پہ ہے مانگنا کیا کمایا ہم کس طرح رہیں گے ٹوٹے ہوئے مکان میں. یہاں تو گزارا ہو جاتا ہے. جب وہاں دیکھیں گے جائے کہ میرا دوست ہے اس کتنا بہترین مکان ہے زور لگا لیں آپ وہاں کو نہ ادھار لے سکیں گے نہ فراڈ کر سکیں گے نہ پیسے چھین سکیں گے کسی کے. بس یہ ہی ہوگا کہ ترستے رہیں گے. ترسنا کیسا ہوگا؟ دائمی ترسنا ہوگا. مزے کر رہا ہوگا اس کے نکل رہے ہوں گے چیزیں آگے پیچھے محل. بس کیا جی یہاں سستی ہے جی. یہ سستی جو ہے بہت بڑی چیز ہے. آج ایک حدیث ہمیں پہنچتی ہے کہ تمہارا مال جتنا بنے گا کس سے بنے گا؟ اللہ کے ذکر سے. بہت محلات ہوں گے خر سے دکھ بیٹھے ہیں فرشتے آرام سے بیٹھے ہیں اپنے ٹیک لگائے یہ بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہ پیچھے سے مال نہیں آ رہا یہ بھی کام نہیں کر رہا. سبحان اللہ. یہ بھی دکھا دیا کہ کیونکہ وہ ذکر چھوڑ دیا اس نے. جب تک وہ ذکر کرتا تھا پہلے پہلے بہت شوق تھا تو ہم نے دیکھیں کہاں تک آدھا مکان بنایا اس کا آدھے کمرے رہ گئے. کہیں شو 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 تو آ گیا حضرت صاحب کے پاس جاتا تھا اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا جوش آیا اس نے جی میں دے کروں گا ریور سے ماننا شروع کیا. صبح شام بھی آتا تھا پھر کیا ہو گیا صبح شام سے غائب ہوا پھر جمعرات ہی رہ گیا پھر جمعرات سے غائب ہوا ملنے سے چلا گیا پھر کبھی منتیں بھی کرو تو نہیں سنتا تھا جیسے اس کو بتانے والے کو فائدہ ہے. حالانکہ سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے سبحان اللہ جو اللہ کے خاطر کسی کو دین بتاتا ہے. جب کوئی آپ کو راستہ بتا رہا ہے کوئی چیز بتا رہا ہے یقیناً اس کو کوئی لالچ نہیں ہے. جب کیا لالچ اس کو کوئی آپ کو ذکر سکھا رہا ہے اس کو کیا لالچ ہے؟ محل تو آپ کا بنے گا لیکن شیطان یہ ذہن انسان کی ڈال دیتا ہے انہوں نے اس سے بچو یار یہ تو پکڑے گا پھر کہے گا میں ذکر کراؤ پھر کہے گا میں فلاں کام کراؤ تو پھر یہ کہے گا. ہر آدمی کے ایک اللہ نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے شعبوں کے اندر ہر انسان میں ایک چیز غالب کی ہے اور اس طریقے سے دین پھیل رہا ہے. ہر طرف سے دعوتیں آ رہی ہیں انسان کی طرف سے. کہیں حدیث کی دعوت آتی ہے کہیں قرآن کی دعوت آتی ہے کہیں فقہ کی دعوت آتی ہے. تو ایک ہر آدمی پہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس پہ غلبہ ڈال دیتا ہے وہ اس پہ کام شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے دوسرے کو منع کر رہا ہے نہیں. ہر آدمی کہے گا یہ کام کرو یہ کام کرو تو جس کی سنو وہ کام کرو اپنی زندگی کے اندر چیز کو پیدا کرو. چھوڑتا کیا آدمی ہے زندگی ہماری اس لیے جس لیے ہم ساری زندگی لگاتے ہیں اس میں صرف 5 یا 10 منٹ لگتے ہیں. آپ کو کھانا کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے مجھے بتائیں. पांच दस मिनट फटाफट रोटी, इतना जितना हमारी मुट्ठी है ना, हमारा मैदा इतना है बस, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उसमें अल्लाह ने लिखा है कि जो लालच करता जाएगा वो बढ़ता जाता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है। देखते वो एक रोटी खा जाता है, पांच खा जाता है, वो खुद अपने मैदे को बढ़ाता रहता है। अगर इंसान इक्तफा रखे उस मुट्ठी पर, अल्हम्दुलिल्लाह एक चपाती खाएगा, पानी पिएगा, उसका पेट भर जाता है तीन या चार पाँच मिनट लिखते हैं, जिसके लिए सारी जिंदगी लगाना है। और पेट बनने के लिए आप दही से रोटी खा लें, पानी भगो के रोटी खा लें, खजूरों के साथ रोटी खा लें, ब्रेड पर आप चीज लगा खा लें, पेट में वही फुल जाएगा। जिसने बिरयानी खा के आया उसका पेट भी फुल होगा, और जो एक दही के साथ रोटी खा के आया पेट उसका भी फुल होगा। मुझे बताया हमारे बुजुर्गों मिसालें नहीं लिखी है लोगों ने कि सत्तू खाते थे, पेट ही बनना है, फायदा क्या, मैं यहाँ चार पाँच मिनट दस मिनट और जया करूँ, रोस्ट बनाऊँ उसके साथ, फिर नमक डालूँ, फिर उसमें मिर्ची डालूँ, कहते पेट ही बनना है ना, तो इस सारे में जो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मेरा तो महल रह गया, जहाँ मैंने जाना है मेरा तो काम खत्म हो गया। इस मामले में अल्लाह का जिक्र क्यों ना करूँ ताकि मुझे आखिर में कुछ मिले। तो एक चीज़ क्या नसीहत मिली कि अगर हम बैठेंगे और अल्लाह को याद नहीं करेंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। जिसको ये बात पे यकीन है जो हाथ खड़ा कर ले, हदीस सुन रही है, हदीस है कि अगर बैठेंगे तो वहां मैल नहीं बनेगा। ये नबी पाक ने फरमाया, मैं देख कर रहा हूं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं ये देख कर रहा हूं, महाराज पे ये बताया ना। और जो अल्लाह का जिक्र करता रहेगा उसके महलात बनते रहे। जिस दर्जे का आपको मकान चाहिए उसी दर्जे का अल्लाह का जिक्र। और आप ये देखेंगे हदीस के अंदर जो मुकाम बताया है ना जिक्र का, देखो जाकिरीन के लिए ये होगा, इस मुकाम पे बैठे होंगे, हशर के मुकाम पे ये तख्त बिछा होगा, ये है ना सारी हदीसें पढ़ते, चौथवीं रात के साथ चेहरे चमक रहे होंगे, वो वजह क्या है? वजह यही है कि जिक्र से जो उन्होंने काम किया उसका अमाल उनको नजर आ रहा है, इस दर्जे पर चले गए। और सबसे आला जिक्र करने वाला कौन सा होगा जिसका मुकाम होगा मुझे बताएं, जिसे एक मिनट में अल्लाह की याद से जो गाफिल नहीं हुआ होगा। कि सिस्टम जिक्र कर अल्लाह ने ऐसे रख दिया कि जितना चाहे तू बड़ी जन्नत बना ले, जिस तर्जे की बना ले, अगर हर वक्त जिक्र करेगा तो हर वक्त तेरी जन्नत सजती रहेगी। जी हर वक्त कैसे करें कि उसका भी मैं तेरा इंतजाम कर देता हूँ, सुभान अल्लाह। समझिए बात, सब समझ गए, घाक है मेरे पुराने हो गया है जिक्र कल भी मैंने, सुभान अल्लाह। तो वो सिस्टम मैंने पैदा किया है तुम्हारे में, और ऐसे लोग हैं जिसमें सारी दुनिया हैरान होगी उनके चेहरों को देख के, आसमानों पर जिस हशर उनके चेहरे चमकेंगे, तो ये क्या बात है। बात यही है कि उन्होंने उस चीज को इस्तेमाल किया था कि जो चीज मैंने उनको दी थी कि उसके साथ तुम कायम रहना अल्लाह के जिक्र पे। मैंने तुम्हें कल्ब जो दिया है वो ऐसा दिया है कि हर वक्त तुम उससे मेरा जिक्र कर सकते हो। अल्लज़ीना यस्कुरूना क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, कमाते हुए भी, खाते हुए भी, सोते हुए भी, चलते हुए भी, फिरते भी, गाड़ी पे भी, जिस हालत में भी होगे तुम अल्लाह के जिक्र से नहीं रुकोगे, और तुम अल्लाह के जिक्र से नहीं रुकोगे तुम्हारी जन्नत भी नहीं रुकेगी। तो कितनी बड़ी जन्नतें बनेंगी उसको मुझे आप पता है भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। तल का पतने बीमार हो जाए, अपाहिज हो जाए, आज से वादा करना चाहिए, करेंगे भाई, अपने नुकसान कर रहे हैं, साफ हदीस बता रही, बेकार वक्त जया कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीहात में ना उठें, बल्कि किससे करें जिक्र, अल्लाह कल्ब से करें। और देखें आसान भी है माशाल्लाह, और रिया से भी पाक है, और सुकून भी मिलता है, और हर वक्त जारी रहता है, उसके बाद क्या दिल नूरा नूर रहता है। कितनी बड़ी चीज है अल्लाह का जिक्र, जिक्र कल्बी, खल्द के खफी, मराकबा, इतने सारे नाम है इसके हदीस के अंदर, मराकबो कहते हैं, जिक्र कल भी कहते हैं, खामोश जिक्र कहते हैं, अल्लाह को जिक्र दिल से याद करना होता है। भैया जाके सीखना पड़ता है, किसी अल्लाह वाले के पास जाके हमें सिखा दें, सेकंड में आपको सिखा देगा, बता देगा, आप चलना शुरू हो जाएंगे, जिक्र शुरू हो जाएगा आप खत्म। फिर देखा एक महल, महल तो थे मुख्तलिफ डिजाइन जिस तरह बनते हैं, आप जाएंगे देखेंगे ये किसका मकान है, ये किसकी कोठी है, ये किसका होता है ना, हर डिफरेंट नजर आएगा भाई, ये तो माशा बड़ा अच्छा मार्बल लगाया है भाई, इसे कहते हैं ना यार ये कौन सी, ये तो चाइनीज मार्बल लगाया है जी, हमने वहां से मंगाए थे, इटली इटली का बना है जनाब जी बाथरूम हमारा जी, हमारे पाकिस्तान में बड़े नशे चलते हैं ना ऐसे लोगों के, इटली का है तो जापान का जी है तो टोंटी फलां की है, होता है सही बता रहा हूँ चलता, तो वहाँ भी ऐसी है। वहाँ एक गुम्बद थे एक महिला थे, बड़े बड़े खूबसूरत गुम्बद, गुम्बद समझते हैं जैसे हमारी मस्जिद में बड़े गुम्बद है ना ऐसा, अभी भी मस्जिद है ना किसी को गुम्बद है किसी भी नहीं, और जो लंदन वाले खान का है उसमें भी ऐसी गुम्बद है माशाल्लाह, आप उनको देखे नहीं वो भी ऐसी जो लंदन वाले खान का हमारी उसकी ऐसी गुम्बद है, तो हर मस्जिद मुख्तलिफ है, इसी तरह हर महल में मुख्तलिफ। तो सवाल कर दिया गया कि भाई ये क्या बात है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ गुम्बद और इतना खूबसूरत गुम्बद पर काम हो रहा है और इतना हसीन के रोशनी चमक रही है चांद सूरज की तरह उस गुम्बद पर, कहते हैं हाँ जी ये भी एक इसका खर्चा एक्स्ट्रा। बोले सुभान अल्लाह, अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे वो खर्चा, गुम्बद बनेगा फिर उसके आपके महल के ऊपर, सबके महल होंगे लेकिन आपका गुम्बद बन जाएगा, करेंगे वो पक्की बात, बहुत आसान गुम्बद भी बना जाता हूँ आज मैं आपके महलात का। तो फरिश्तों ने कहा जी यहाँ ये तो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है आपके लिए, थे वहाँ लोग कहते हैं यहाँ थे लोग एक्स्ट्रा खर्चा लगा देते थे, क्या सुभान अल्लाह, कि जो शख्स 7 दफा कितनी दफा क्या पड़ेगा, सुभान अल्लाह व बेहमदही सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह व बेहमदही कितनी दफा गुम्बद शुरू हो जाएगा बनना उसका, अल्लाह कितना वक्स है कि अब हम सब गर्दन झाड़ कर देखें कि हम इतनी तौफीक नहीं होती हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो 7 दफा हर फर्ज के बाद पाबंद हो जाएगी हमने 7 दफा पढ़ना है, 7 गुम्बद लगेंगे आपके 7 महलात के ऊपर से, जिंदगी में कितनी दफा पढ़ेंगे आप मुझे बताएं कितना हो जाएगा, कितनी दफा पढ़ना है मामूल करेंगे जैसी फर्ज नमाज फारिग हों अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो तस्बीहात पढ़ते हैं उसके बाद ना इसमें यह भी शामिल कर लें कि 7 दफा हम ये पढ़ के उठेंगे, कभी कभी भूल जाए तो नमाज के बाद पढ़ लें, नफलों के बाद पढ़ लें, सुन्नतों के बाद पढ़ लें, कितनी दफा क्या पढ़ना है अल्लाह। तो भाई ये है मामला, दुनिया के हम अमीर तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपके पास पैसे पूसे हैं माशाल्लाह, अमीर आदमी है, लेकिन ये बेकार है, इस अमीर को कोई नहीं पूछेगा, ये तो मिट्टी मिल जाएंगी सारी चीज़ें, आखिरत के अमीर बन जाए। तो आज से 2 काम हमने करने हैं, नंबर 1 वक्त से नहीं करना है, अल्लाह का जिक्र करना है अपने लिए करना है, नंबर 2 हर नमाज के बाद पाबंदी के साथ 7 दफा ये पढ़ना है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।